आज 73 नंबर श्लोक चलेगा ना। क्यों राजू तेहत्तरी चलेगा ना। कर्म जानमंतरे भूद्याद्योगात बुद्धे ते पुनः इति कैवल्य शाखायाम कर्म जो बोध ईरितः। कैवल्य शाखा मतलब कैवल्य उपनिषद। जानमंत्रे दूसरे अर्थात पूर्व जन्म में पिछला जन्म जेड़ा निकल गया साडा। जन्मांतरे दूसरे अर्थात पूर्व जन्म में जत कर्म अभूत जेड़ा कर्म कीता सी पिछले जन्म दे विच असी जेड़ा कर्म कीता सी केड़ा जत कर्म अभूत जो कर्म पुण्य पाप रूप कर्म था तद योगात पुनः उसी से युक्त हुआ फिर बुद्ध ते जागरण को प्राप्त होता है। तो गाढ़ निंद्रा च सुता सी ब्रह्म दे विच एकमेक सी ठीक तो फिर वो केड़ी चीज ने उन्हें बाहर खिंच दिता ब्रह्म तो अलग कर दिता कहिंदा जेड़े पिछले जन्म दे विच पुन अथवा पाप कीते सी ना उन्होंने उन्होंने की किया वो कर्म रूपी रस्सी ने फिर खिंचता ਤਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁਗਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ
ਅਗਿਆਨੀ ਵਾਸਤੇ
ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਪੈ ਜੀ ਉਹਦਾ
ਅਗਿਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਿਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਵੀ ਹੈ ਮਰਨ ਵੀ ਹੈ ਪਾਪ ਵੀ ਹੈ ਪੁੰਨ ਵੀ ਹੈ
ਅਧਿਆਰੋਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ज्ञानी ने सत्संगी बेटा फर्क इतना ही है। सत वेद गुरु जे मिथ्या कहिए ताते भव दुख नसो न चाहिए। उन्हें क्या है ना वेद गुरु सब मिथ्या है। विचार सागर च गुरु ने क्या सी वेद गुरु शास्त्र सब मिथ्या है तो फिर उन्हें क्या सी वेद गुरु जे मिथ्या कहिए जो तुसी वेद गुरु कह रहे वेद भी मिथ्या है गुरु भी मिथ्या है ताते भव दुख नसो न चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕੈਸੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਜੀ।
ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੈਸੇ ਵੇਦ ਗੁਰੂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਦੀ ਮਿੱਥਿਆ ਨਾਲ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। जैसे वो गादड़ी का दृष्टांत नहीं हाँ वो आ गया है ना। बुद्ध जागरण को प्राप्त होता है इति कैवल्य शाखायाम इस प्रकार कैवल्य उपनिषद में बोधः कर्मजः ईरितः जागरण को कर्म अधीन कहा है। इस वास्ते की कहिंदे आ जेड़े मतलब इस संसार दे विच जिन्ने जन्म लिया ना जन्म प्रगट की नहीं गल कर रहे जिन्हें भी जन्म लिया है वह कर्म के अधीन होकर ही जन्म लेगा। क्यों अधीन मतलब जेड़े कर्म किए हैं उन्होंने भोगन वास्ते ही आएगा। ये हिसाब ला लो चाहे वह पुन है चाहे पाप है ता उन्होंने कहते हैं कर्म के अधीन है जो भी जन्मया है
मतलब जो बीज पाता
उगना ही जो टाइम आएगा ये नहीं है टाइम तो बगैर नहीं गुली डंडे का बीज धान च नहीं उगदा सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ था इसमें हेतु कहते हैं। हुण तुसी इह सो अज पाठ बड़ा वधिया चलना जे अज तो तुहानू दस दूगा ग्रंथकार की विषयानंद किनू कहिंदे ब्रह्मानंद किनू कहिंदे लेसा आनंद किनू कहिंदे वासनानंद अज अपने आप नूं घटा लैणा किंचित कालम प्रबुद्धस्य ब्रह्मानंदस्य वासना अनुगच्छेद तद तुष्णी मास्ते निर्विषयः सुखी प्रबुद्धस्या किंचित कालम जगे हुए मनुष्य को स्वल्प काल पर्यंत, स्वल्प काल में थोड़ा समय वास्ते, ब्रह्मानंदस्या शिशुक्ति में अनुभव किए हुए ब्रह्म सुख का वासना अनुगच्छेत संस्कार अनुगत रहता है। जतः निर्विषया, क्योंकि जागृत में जाग जाने पर विषय अनुभव रहित हुआ भी सुखी तुष्णिम आस्ते सुखी होकर चुपचाप पड़ा रहता है। इससे जाना जाता है कि सुषुप्ति में ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ था। कि क्या वो कह रहा, जो सुषुप्ति विच बंदा सुता सी वो ब्रह्म दे नाल एकमेक सी, जग गया फिर भी पिया है चुपचाप। क्यों? वो पिछला जेड़ा आनंद आया सी ना, वो उनू उठन नहीं दे रहा, वो दे विच वो मगन है फिर भी, जागने पर भी पिछले आनंद आया सी उस आनंद मस्त है, इस वास्ते चुप चाप पिया रहिंदा, जाग आ गई है। हां फिर आवे, वो फिर आवे अर्थ की होया, पहला आनंद का अनुभव किया ब्रह्म आनंद लीन सी, जाग आ गई, कर्मा रूपी रस्सी खिंची गई, जाग आ गई या बिस्तरे ते पिया है, जा उठ भी बैठा तैं बैठा रहेगा, वो जरा आनंद है उन्हें फिर अनुभव करना चाह रहा। तब उस तुष्णी भाव अवस्था को क्यों नहीं स्थित रहता, इस आशंका का उत्तर अगले श्लोक में कहते हैं। वो कह रहे हैं जो चुपचाप प्या है तो इतना ही प्या ही क्यों नहीं रहता, फिर आनंद ची क्यों नहीं रहा, फिर उठ के दौड़ने को लग जाता, अंदा उच्च हूं तुम दस देने तू क्यों दौड़ा। कर्म भी ही प्रेरित पश्चात नाना दुखानी भवायन शनि विस्मृति ब्रह्मानंद मेशो खिलो जना, शनि धीरे धीरे विस्मृत ही भूल जाता फिर। कर्म भी ही प्रेरित, उन्हें प्रश्न किया सी ना कि तब उस तुष्णी भाव में चुपचाप जरा प्या है वो इदा ही प्या ही क्यों नहीं रहा, फिर आनंद तो आ ही रहा, प्या रवे तो हूँ क्यों उठता, फिर वो दसन लगा। कर्म भी ही प्रेरित, पूर्वोक्त कर्मों से प्रेरित हुआ ऐसा अखिलो जना, जह संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य में जिन्हें भी है, पश्चात नाना दुखानी बाद में अनेक प्रकार के दुखों का भावयन समरण जहाँ चिंतन करता हुआ ब्रह्मानंद ही क्षण ही ब्रह्म सुख को धीरे धीरे स्मृति भूल जाता है। वो जो कर्मा रूपी रस्सी खिंची गई तो फिर मन संसार दे संकल्प विकल्प करने लग गया, कभी दुख का संकल्प आ गया सिमरण तो ब्रह्मानंद नु भूल के दुखी हो गया। इसलिए तुष्णिम स्थित दीर्घ काल तक नहीं रहता, इस वास्ते कहिंदे ओ जिहड़ा प्या है ना उन्हों फिर कोई काम का चेता आता और दुख अनुभव करता है तो फटाफट उठ के काम के रजगुण दौड़ जाता। वक्षमाण है तुसे भी सुषुप्ति कालीन ब्रह्मानंद के विषय में विवाद नहीं करना चाहिए, इस बात को कहते हैं। पूर्व ऊर्ध्व मपि निंद्राया पक्षपाते दिने दिने ब्रह्मानंदे नृणाम तेना प्रज्ञो अस्मिन् विवदेत कहा। दिने दिने नृणाम प्रतिदिन मनुष्यों का निंद्रायाः प्राक निंद्रा से पहले ऊर्ध्वम अपि और निंद्रा के पश्चात भी ब्रह्मानंदे पक्षपात ब्रह्म सुख में स्नेह देखने में आता है। अंधे जदों बंदा सौ के उठता है उदो भी ब्रह्मानंद दे नाल उहदा प्रेम देखने चाहुंदा, क्यों प्यार रहिंदा चुपचाप, ते निंद्रा तो पहला भी वो फिर निंद्रा लैनी चाह रहा है, ते निंद्रा तो पहला भी और निंद्रा तो बाद भी, सुषुप्ति तो पहला भी ब्रह्मानंद नाल उहदा स्नेह है और सुषुप्ति तो बाद भी ब्रह्मानंद नाल उहदा स्नेह है, ये देखने चाह रहा, क्यों जदों सुषुप्ति तो उठता है ऐसे प्यार इंदा जग जांदा उसे दा अनुभव करना चाह रहा दोबारा, और जदों जगया हुंदा ਉਦੋਂ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਨਿਹਤ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਕੇ ਸਨੇਹ ਦੇਖਣੇ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ ਤੇਨਾ ਤਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇ ਅਸਮਿਨ ਕਹਾ ਪ੍ਰਗਿਆ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੇਂ ਕੌਣ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਵਦੇਤ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਰਵ ਪਕਸ਼ੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰਵ ਪਕਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸ਼ਣਿਮ ਸਥਿਤੋ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਚੇਦ ਭਾਤੀ ਲੌਕਿਕਾ ਹਾ ਅਲਸਾਸ ਚਾਚਰਤਾਰਥਾ ਹਾ ਸਿਉਹ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੇਣ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਮਤਰ ਕਿਮ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸ਼ਣਿਮ ਸਥਿਤੋ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਹਾ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸਥਿਤ ਹੋਣੇ ਮਾਤਰ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਚੇਤ ਭਾਤੀ ਜਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੋ ਲੌਕਿਕਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਸਕਾਰ ਸੇ ਰਹਿਤ ਜਥੇਚਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਅਲਸਾਹਾ ਚਰਿਤਾਰਥਾ ਸਿਹੁ ਆਲਸੀ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਯਾਸ ਹੀ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗੇ। ਪੁਨਃ ਅਤਰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੇਣ ਗੁਰੂਣਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸੇ ਕਿਮ ਕਿਆ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਪਿਆ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਜੇ ਤਾਂ। ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਸੁਸਰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਣ ਆਦਿ ਸਾਧਨ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਵਣ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਸਰਵਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੈਸੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾ ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਧਿਆਸਣ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਾਗਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਿਰਧਿਆਸਣ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸੁਸਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕਿਆ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਸੁਸਰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਸਰਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਣ ਸਾਧਨ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਬਿਰਥਾ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਪਿਆ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੇ ਤੋ। ਜਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਪਰ ਤੋ ਕਿਰਤਾਰਥਾ ਅਵਸ਼ ਹੋਗੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਕਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਆ ਪਹਿਲੇ ਪਕਸ਼ੀ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਿਹਦੀ, ਪੂਰਵ ਪਕਸ਼ੀ ਦੀ, ਆ ਦੂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਪਰ ਤੋ ਕਿਰਤਾਰਥਾ ਅਵਸ਼ ਹੋਗੀ। ਆ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦਾ ਸੋਕਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਕਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਬਾਧਿਅਮ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬ ਠੀਕ ਸੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਧਿਅਮ ਬ੍ਰਹਮ ਇਤੀ ਵਿਦਯੁਸ ਚੇਤ ਕਿਰਤਾਰਥਸਤਾਵਾ ਤੈਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਸਤਰੇ ਬਿਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੀ ਕਹਾ। ਬਾਧਿਅਮ ਬ੍ਰਹਮ ਇਤੀ ਤੁਮਨੇ ਜੋ ਕਹਾ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੇਤ ਵਿਦਯੁ ਜਦੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੋ ਤਾਵਤਾ ਏਵ ਉਸਨੇ ਮਾਤਰ ਸੇ ਹੀ ਅਰਥਾਤ ਜਾਣਨੇ ਮਾਤਰ ਸੇ ਹੀ ਤੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਵੇ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਤਿਅੰਤਮ ਗੰਭੀਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਰਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਸਤਰੇ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਦੂਸਰੇ ਉਪਾਏ ਸੇ ਕਹਾ ਵੇਤੀ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਤਮੋ ਆਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ, ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੈਸੇ ਦਾਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸਕੋ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਏ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉਸਕੋ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਐਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਕੇ ਵਾਕੇ ਸੇ ਪੂਰਵਕਤ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਕੋ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁਝਕੋ ਕਿਰਤਾਰਥਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ऐसी शंका का अनुवाद करके उपास सहित उत्तर कहते हैं। ये पूर्व पक्षी कह रहा हूं जिदा तुम दस रहे मैं भी जान लिया मेनू फिर मैं क्यों नहीं कृतार्थ होया कृत कृत हां जी हूं दस रहे हूं जानामी अहम तद उक्त्या कुतो मेना कृतार्थतः शृणु अवत्र तादृशो वृत्तम प्रज्ञा मानस्य कस्यचित् अहम अद्य मैं अब तदुक्त्या आपके वचन से जानामी में ब्रह्मानंद को जान गया हूँ तथापि मेरी कृतार्थता कुताना कृतकृतता क्यों नहीं हुई। इस शंका का उत्तर देते हैं कि अत्र किम विषय में अत्र इस विषय में त्वादृक कस्यचित् तुम्हारे जैसे किसी प्रज्ञा मानस्य अपने आप को विद्वान मानने वाला वृतम श्रृणु वृतांत सुनाता हूँ बंदा क्यों नहीं मैं तुसी हुण दसण दे ते मैं भी सुन लिया भी ब्रह्म जिहड़ा आनंद स्वरूप है सुख स्वरूप है ते मैं क्यों नहीं कृतार्थ हो गया चतुर वेद विदे दे मिति शृणुवतो वोचतः वेदस् चत्वारा इति एवं वेदमी में दिए ताम धनम आ जड़ा तन है अपा उनू देना है जड़ा चारा वेदा दा जानकार हो वे, वेती बन जानदा हो किसी ने सुन लिया चार वेद है ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद वो कहता मैं जानना भी चार वेद है आ ना जी उन्होंने ये तन मैनू दे दो कहते तू गिनती जानना चार वेद है चतुर्वेद विदे देयम चारों वेदों के वेता के लिए जह धन देना चाहिए ऐसा किसी ने क्या है ना इति श्रुणवन ऐसा वचन को सुनता हुआ किसी ने अवोचत वेद चतवारा कहा के वेद चार ही हैं इति एवं वेदमी इस प्रकार मैं जानता हूँ मैं धनम दिए ताम इसलिए मेरे को धन दे दो। उन्हें क्या चार वेदों का जरा जानकार होगा ना उन्हें ये पैसे दान देने या धन जरा रखे किसी ने सुन लिया चार वेद है वो कहता भी वेद तो चार है ये धन मैनु दे दो इदा जरा जानता उसके वास्ते नहीं रखे ये जरा धन रखा है जेडे इदा तेरे वर्गे जेडे जानते हैं वेद नू उन्हां वास्ते नहीं रखा तो किदा किहदे वास्ते रखा है वेद चार है इस प्रकार जानने वाला वेद की संख्या को ही जानता है वेदों को स्वरूप को नहीं जानता आते एव वह दान पात्र नहीं इस पूर्व इस प्रकार पूर्व पक्षी के प्रश्न का समाधान समाप्त समता दिखा कर कहते हैं। देखो की कह रहे ऐसे जरा वो संख्या जानता चार वेद है बस वेद का जरा स्वरूप है उन्होंने नहीं जानता संख्या मेषाम जानामि ना तू वेद ना शेषतः यदि तरही त्वमेवेदम ना वे ना शेषम ब्रह्म वेतसि ही एवं संख्याम एव जानामि जह संख्या को ही अर्थात गिनती को ही जानता है ना तू वेदान अशेषतः परंतु वेद के स्वरूप को पूर्णतया नहीं जानता है यदि तरही एवं तम अपि यदि ऐसा कहते हो कहते तो उसी प्रकार तुम भी ब्रह्म अशेषम नहीं वेत्सी ब्रह्म को पूर्णतया निश्चय करके नहीं जानते हो इस वास्ते कृतार्थ नहीं कृत कृतता को प्राप्त नहीं हुए। जैसे संख्या अतिरिक्त वेद के स्वरूप का भेद है उसी प्रकार स्वगत भेद रहित सुख स्वरूप निरंश ब्रह्म में अज्ञान मान अंश है नहीं। अज्ञान मान अंश है ही नहीं उदे च, इसलिए मैं अपूर्ण ज्ञानी हूं, जह उपलब्ध मेरे में नहीं घटता है। इस प्रकार प्रश्न पूर्व पक्षी कहते हैं। ते फिर ब्रह्म नु कैसे जानना है?
ब्रह्म को मतलब नाम से जानना कोई फायदा
नहीं,
अंदर से जान।
कैसे जानना है? आ सुन लो, अखंड एक रसानंदे माया माया तत्कारी वर्जते अशेषत्व सवशेषत्व वार्ता वर्ष एव कह। माया तत्कारी वर्जते, जरूर जरूर दो लिखो। माया तत्कारी वर्जता की कह रहे हैं, माया और माया का कार्य तत्वर्जता, माया और माया के कार्य तो रहित है वो कौन? ब्रह्म। ब्रह्म कैसे है? माया तत्कारी वर्जता, माया और माया के कार्य प्रपंच से रहित और कैसा है? अखंड एक रसानंदे अद्वितीय समरस ब्रह्मानंद में अशेषत्व सवशेषत्व वार्ता वर्ष एव, पूर्णता अपूर्णता कहने का अवकाश ही नहीं। तो ब्रह्म पूर्ण है कि अपूर्ण है ये तो कह ही नहीं सकते। किदां कह सकते? सुषुप्ति विच कह सकता मैं पूर्ण हूं जां अपूर्ण हूं, जां मैं ब्रह्म नूं जानदा हूं?
हां जी हां, उन्हें ये भी नहीं पता जी।
सुषुप्ति च ये नहीं कह सकते मैं ब्रह्म नूं जान लिया जानदा हूं, जां मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, जां ब्रह्म एक है अखंड है एक रस है। ये तो समझाने वास्ते शब्द है। हो गया ना हाँ जी। इसलिए ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान ना होने से कृतार्थता नहीं ऐसा कहना असंगत है। अब ब्रह्म ज्ञान में अशेषत्व आदि दिखाने के लिए मैं ब्रह्म को जानता हूँ, इस प्रकार कहने वाले पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति विकल्प पूर्वक प्रश्न करते हैं। वो कहता ना मैं भी ब्रह्म नु जानना, अंदर जेड़ा कहता ना मैं ब्रह्म नु जानता, वो उन्हें कुछ नहीं जाना। अपनिषद विच भी है जेड़ा कहता मैं ब्रह्म नु जानिया उन्हें भी नहीं जान लिया, जेड़ा कहता मैं ब्रह्म नु नहीं जानिया उन्हें भी नहीं जानिया। क्यों? ब्रह्म तो अपना स्वरूप है। तो सुषुप्ति विच केड़ा कहोगे मैं ब्रह्म नु जान लिया, तो केड़ा कहोगे मैं ब्रह्म नु नहीं जानिया? जप ते नहीं चल रहा? मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं कित जप ते नहीं चल रहा? तू कंठ कर लिया हो रटी जा रहा हो। शब्दानेव पठा पठस्य हो तेषाम अर्थ च पश्यसि शब्द पाठे अर्थ बोधस्ते संपद्यतत्वेन शिष्यते। शब्दान एव केवल शब्द को अखंड एक रस अद्वितीय सत्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है इत्यादि शब्दों को ही केवल पठसी पढ़ते हो अर्थात रटते हो। है कले ही नहीं रटी रटी जानते रटते हो खाली यही घोटा लाई जान दे। आहो तेषाम अथवा उन शब्दों के अर्थ चा अर्थ को भी भेद रहित्य को भी पश्यसि देखते हो अर्थात समझते हो। शब्द पाठे यदि शब्दों का रटना जह प्रथम पक्ष अधिकार करते हो तो अर्थबोधा तुम्हारे लिए अर्थ ज्ञान संपद्यत्वेन शिष्यते हासिल करना करने को भी बाकी है। कम बाकी है। अर्थ को भी जानते हो इस द्वितीय पक्ष में भी सशांत्व को भी दिखाते हैं और ज्ञान की पूर्णता की अवधि को भी दिखाते हैं।
कहते पक्ष भी पूरा नहीं है।
हाँ।
ਸੱਤ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਅਸਲ ਅਸਲ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ
ਬਣੂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣੂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਅਲੱਗ ਹੋਊ ਤਾਂ ਜਾਣੂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵਸਤੂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠ ਜੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਅਰਥੇ ਵਿਆਕਰਨ ਆਦਿ ਬੁੱਧੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਕਰੋ ਅਸ਼ਿਸ਼ਤੇ ਸਿਆਦ ਕਿਰਤਾਰਥਤਵਾ ਧੀਰ ਜਾਵਤ ਤਾਵਤ ਗੁਰੂ ਮੁਪਾਸਵਾ ਭੋ ਇਹ ਭੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਬੋਧਨ ਭੋ ਭਗੋ ਅਗੋ ਜਾਹੀ ਹਾਂ ਭੋ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿਆਕਰਨਾਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਕਰਨ ਕੇ ਬਲ ਸੇ ਅਰਥੇ ਬੁੱਧੇ ਅਰਥ ਕਾ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪਰ ਵੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਅਵਸ਼ਿਸ਼ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਜਾਵਤ ਕਿਰਤਾਰਥਤਵ ਦੀ ਜਬ ਤੱਕ ਆ ਕੰਪਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜਬ ਤੱਕ ਕਿਰਤਾਰਥਤਵ ਬੁੱਧੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਹੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਬੁੱਧੀ ਸਿਆਤ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਤਬ ਗਿਆਨ ਕੀ ਪੂਰਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਆਪਣੀ ਆਊਗੀ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਪਛਾਣੇਗਾ ਦੂਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੂਗਾ ਕਿਰਤ ਕਿਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੁੱਧੀ ਸਿਆਤ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਤਬ ਤੱਕ ਤਬ ਗਿਆਨ ਕੀ ਪੂਰਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਤਾਵਤ ਇਸ ਲਈ ਤਬ ਤੱਕ ਕਿਰਤਾਰਥਤਾ ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ ਭੋ ਗੁਰੂ ਉਪਾਸਵਾ ਹੇ ਵਾਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਵ ਪਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇ ਕੋ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਕਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਤੀ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਸਤਾ ਮੇ ਤਤ ਦਿੱਤਰ ਜਤਰ ਸੁਖਮ ਸਿਆਦ ਵਿਸ਼ੇਹਿਰ ਬਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਹਿਰ ਬਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੱਤਰ ਸਰਵੱਤਰ ਵਿਦੇ ਤਾਮ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦਸਿਆ ਵਾਸਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦਾ ਵਾਸਨਾਮੈ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੈਸੇ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਤੋਂ ਜਗਿਆ ਬੰਦਾ ਗਾੜ ਨਿੰਦਰਾ ਚ ਪਿਆ ਸੀ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਸਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਖਾਣੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਉਹਨੂੰ
ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਨਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵਾਸਨਾ ਆਨੰਦ ਨੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਟਕਾਈ ਰੱਖ ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਏ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਬਿਰਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਟਿਕੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖ, ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੁੱਖ, ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਸ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਵਾਸਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਵਾਸਨਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੀ, ਉਹ
ਮਤਲਬ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਸਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ,
ਹਾਂ ਹੈ ਵਾਸਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ,
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸਨੀ ਚੱਲੂ
ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਥੋੜੀ, ਹੁਣ
ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਥੋੜੀ, ਇਹ ਵਾਸਨਾ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ
ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੀ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਅਰਜਾਈ ਚ ਬੈਠਿਆ, ਤਾਂ ਨੀ ਕਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਐਵੇਂ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਐਵੇਂ ਉਂਗਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੱਥ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨੀ ਹੋਣੀ, ਅੱਗ ਜਲਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਕਣੇ ਤੇ ਥੋੜੇ, ਫਿਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਮਾਰਨਾ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਈ ਚ ਬੈਠਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਦਰ ਵੀ, ਹੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨੀ ਮਿਲਦਾ, ਦੱਸ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨੀ ਮਿਲਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ,
ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਪੈਂਦੀ,
ਹਾਂਜੀ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨੀ ਪੈਂਦੀ,
ਨਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਲਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੰਮ ਬਣੂਗਾ, ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਆ,
ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਏ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਚਲੋ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਆਨ, ਪਰ ਹੈ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ
ਬਹੁਤ, ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਫਿਰ, ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੀ ਕਿਸੇ ਇੰਦਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਫਿਰ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਹੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਆਨੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ।
ਬਦਰੀਨਾਥ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਐਂ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਰਹੀ
ਨਾਲ,
ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ ਨੂੰ ਜਾਈਏ
ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਯਾਗ,
ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ,
ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ,
ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਛੱਡ ਦੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾਦ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋੜਿਆ,
ਹੈ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਔਰ ਵਾਸਨਾਨੰਦ ਕਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾ ਕਰ ਅਬ ਆਨੰਦ ਕੇ ਤੀਨ ਭੇਦ ਅਰਥਾਤ ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਆਨੰਦ ਕਾ ਨਿਯਮ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ 44ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮੇ ਆਤਮਮੁਖ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤਉ ਜਹਾਂ ਪਰ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ਾਨੰਦ ਕਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਆ ਵਿਸ਼ਾਨੰਦ ਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ ਲਬਦੇਸ਼ੁ ਤਦਿੱਛੋ ਪਰਮੇ ਸਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖ ਮਨੋ ਬ੍ਰਿਤਾ ਵਾਨੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤੀ, अंतरमुख मनोवृत्ति, जो वृत्ति अंतरमुख होएगी, केड़ी मनोवृत्ति मन, तो फिर की होगा तो आनंद आएगा। विशेषु अपि लब्धेषु अभिलाषित वस्तु के, अभिलाषित माने जेदी इच्छा है, तीव्र इच्छा है, वो वस्तु मिल गई। अभिलाषित वस्तु की प्राप्ति होने पर तद इच्छो परमे सति, उस विषय की इच्छा जब निवृत्त होती है तब अंतर्मुख मनोवृत्तौ, अंतर्मुखीन मनोवृत्ति में अर्थात मन अंतर्मुख होने पर उसमें आनंद, जो आत्मानंद प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित होता है, अर्थात आत्मानंद का जो प्रतिबिंब पड़ता है वह विषयानंद है। ये हो गया विषयानंद, कि किसी वस्तु की इच्छा है, वो वस्तु मिल गई, तो मनोवृत्ति थोड़ी देर अंतर्मुख हुई, तो अंतर्मुख हुई तो वो प्रतिबिंब पै गया आनंद का, है तो जल्दी स्वरूप का आनंद आ, पर उन्हें विषयानंद कह दो, विषय जो लग रहा सानू इच्छू आया तो है, वो प्रतिबिंब तो पिया ही है, मनोवृत्ति अंतर्मुख हुई तब, तो फिर की कहता विषयानंद। चलो विषयानंद का अनुवाद करके अब फलित अर्थ को कहते हैं, ब्रह्मानंदो वासना चा प्रतिबिंब इति त्रयम् अंतरेण जगत अस्मिन् नंदो नास्ति कश्चन। ब्रह्मानंद चा सुषुप्ति अवस्था में स्वप्रकाश से भासमान जो ब्रह्मानंद है, और वासना तुष्णिम स्थिति में विषय अनुभव के बिना प्रतीत होता है। तुष्णी भाव मतलब जो जग जाता है तो प्या है, मतलब जेड़ा भी विषय अनुभव तो बगैर आनंद आवे, वो अपने स्वरूप का आनंद जी, विषय तो बगैर, चाहे वह सुषुप्ति का है, चाहे वह सुषुप्ति तो बंदा जेड़ा उठा वो एवं प्या उदा है, चाहे वह आनंद शब्द सुनता है, चाहे और कोई जप करता है, वो जेड़े आनंद है वो सारे की हो गए। सो जो वासना आनंद प्रतिबिंब है तथा इष्ट वस्तु की प्राप्ति से अंतर्मुख हुई मनो में, मन में प्रतिबिंब रूप से विषयानंद है, ये केड़ा हो गया विषयानंद। इति त्रयम, इस तीन आनंद से अंतरेण अतिरिक्त अस्मिन् जगति, इस जगत में कश्चन आनंद नास्ति, कोई भी आनंद सुख नहीं है, आंदा तिन्ना आनंदा नु छड़ के तीसरा चौथा आनंद है नहीं ये संसार च।
इक तो विषय दा हो गया जी,
एक एक आत्म स्वरूप दा आनंद, एक वासना आनंद, एक विषय आनंद, तिन्ना नु छड़ के चौथा आनंद दसो किथे आंदा, आंदा ही है नहीं, जहां तो विषय च आनंद प्रतीत होगा, जहां वासना आनंद आएगा सुषुप्ति तो बाद, जहां स्वरूप का आनंद आएगा सुषुप्ति च या समाधि च, इन्हां तिन्हां आनंदां दे विच दौड़े फिरदे आ, तिन्हां च कित्थे दोवां च तीसरे जाने सुषुप्ति च,
हो
ज्ञान च। इस अध्याय में ब्रह्मानंद का ही विवेचन करना था, फिर दूसरे वासनानंद और विषयानंद का प्रतिपादन असंगत है। अंदर जिहड़ा अध्याय सी तुहाडा की ब्रह्मानंद सी, ब्रह्मानंद योगानंद ये सी प्रकरण चल रहा, तुसी दस रहे जे विषयानंद और वासनानंद ये तो संगत हो गया। ऐसी शंका का उत्तर इस अभिप्रय से देते हैं कि वासनानंद और विषयानंद दोनों ब्रह्मानंद जन्य है, इसलिए ब्रह्मानंद के बोध में उपयोगी होने में होने से कोई असंगत नहीं। आंदे जेड़े विषयानंद है वासनानंद है ना, ये अपने स्वरूप का ही आनंद है, आनंद एक ही है, आनंद एक जगह ही आ रहा है, पर वो लग रहा है कि सानू विषयां चो आ रहा है, तो आंदा ये भी ब्रह्मानंद दे विच उपयोगी है, ता इन्हां दी गल चला रही है। तथा चा विषयानंदो वासनानंद इत्युम आनंदो जने नास्ते ब्रह्मानंदा स्वयं प्रभा, तथा चा उक्त प्रकार से आनंद की तीन वेद सिद्ध होने पर उसमें स्वयं प्रभा जो स्वयं प्रकाश आनंद विषयानंद वासनानंद, विषयानंद वासनानंद इति अमु इस प्रकार इन दोनों आनंदो जनन आनंदों को उत्पन्न करता हुआ आस्ते स्थित है। इन दोनों आनंदा को केड़े केड़े विषयानंद और वासनानंद के दोनों आनंद कितों आ रहे हैं ब्रह्मानंद चो आनंद रूप तो एक ही आ जिदा हूं आप कह लिए आ नदी कितों आ रही आ नदी तो समुद्र चो आ रही आ क्योंकि समुद्र च आ नहीं रही समुद्र में तो जा रही आ नहीं निकली भी समुद्र चो ही क्यों वाष्पीकरण जालू उठिया ग्लेशियर बने उठे जाके तो वह ग्लेशियर ही पिघल पिघल के जहां बरसात हो के नाले चल रहे चश्मे फुट रहे जो कोई तो बरसात भी समुद्र से हो रही है तो नदियां कितों निकलियां समुद्र और समुद्र च जा रही यही हाल है जितने आनंद है उतो आ रहे जा भी उठ रहे जानियन आनंदो आनंद को उत्पन्न करता हुआ आस्ते स्थित होता है ब्रह्मानंद वह ब्रह्मानंद ही है ऐसा जानना पूर्व बीते हुए के कथन पूर्वक उत्तर ग्रंथ का अवतरण करते हैं। श्रुति युक्ति अनुभूति भया स्वयं प्रकाश चिदात्म के ब्रह्मानंदे शुक्ति काले सिद्धे सत्यान्यदा श्रीणु श्रुति युक्ति अनुभव देखो अनुभूतिया श्रुति से युक्ति से अनुभूति से अनुभव से पूर्वोक्त श्रुति प्रमाण और युक्ति प्रमाण अर्थात अनुमान प्रमाण तथा अनुभव प्रमाण से सुषुप्ति काले सुषुप्ति काल में स्वयं प्रकाश चिदात्म के स्वयं प्रकाश चेतन स्वरूप ब्रह्मानंद सिद्धे सती ब्रह्मानंद सिद्ध होने पर अब अन्यात जागरण अवस्था में भी श्रीणु जो ब्रह्मानंद के अनुभव का उपाय आगे कहा जाएगा उसको सुनो अंदा जागरण दे विच भी ब्रह्मानंद आ रहा है वो केड़ा उपाय
पहला सुनाया सुषुप्ति जी ने
हां
ब्रह्मानंद दी व्याख्या सुषुप्ति दे राही कीती है
हां
उन जागृत कर
हां जी पूर्व श्लोक में ब्रह्मानंद ज्ञान के उपाय की प्रतिज्ञा की थी उस उपाय को दिखाने के लिए उसके उपोद्घात रूप से जीव की दो अवस्था प्राप्ति को निमित्त सहित दिखाते हैं जहां आनंदमय सुषुप्तो सा विज्ञान मय आत्मा ताम गत्वा स्वपन प्रबोधम वा प्राप्नोति स्थान भेदतः सुषुप्तो सुषुप्ति अवस्था में लय भाव को प्राप्त हुआ आनंदमय शब्द का वाच्य जहां आनंद मया जो पूर्वोक्त आनंदमय है सा विज्ञानमय आत्मताम वही आनंदमय विज्ञान शब्द का वाच्य बुद्धि रूप उपाधि वाला होने से विज्ञानमय भावा को गत्वा प्राप्त होकर स्थान भेदता नेत्र कंठ आदि स्थान के संबंध से स्वप्नम स्वप्नवस्था को वा बोध्यम अथवा जागरण के प्राप्नोति कर्मानुसार प्राप्त करता है। ओ तुसी ओदे विच पढ़ आए जे जीव दे तीन स्थान दसे सी है ना जागृत अवस्था विच केड़ा स्थान दसा सी नेत्र दा है ना जीव जेड़ा है जागृत अवस्था विच किथे रहेगा नेत्र च और जदों सपन देखदा है उदों जीव किथे हुंदा कंठ च हिता नाम दी जेड़ी नाड़ी है और जो सुषुप्ति च हुंदा उदो प्रज्ञा नामा जी हृदय च पूरी है ना ये तीन प्रकार दे आनंद दस दिता हुण स्थान अब जागृत आदि अवस्था के उपयोगी स्थानों को दिखाते हैं और नेत्र शब्द का अभिप्रेत अर्थ का भी कथन करते हैं। नेत्रे जागरणम कंठे स्वप्नः सुषुप्ति हृदय हृदय बुझे अपाद अपाद मस्तकम देहम व्यापा जागृति चेतना नेत्रे जागरणम चक्षु स्थान में जागृत अवस्था होती है जदों जागरिया है तो उदों जीव किथे है
खुले आँखों
नेत्रे चक्षु स्थान में जागृत अवस्था होती है, कंठे स्वप्ना कंठ देश में स्वप्न अवस्था होती है, हृदय अंबुज सुषुप्ति सुप्ति, हृदय अंबुज मने कमल, हृदय रूपी कमल, हृदय कमल में सुषुप्ति होती है। नेत्र शब्द में संपूर्ण स्थूल शरीर समझना चाहिए, खाली नेत्र ही नहीं समझ लेना, ये नेत्र जो बैठा रहे तो पैर वड्या जाए तो पता ही ना लगे, पैर तो सट लगे तो वो तो नेत्र च बैठा है, उन्होंने की पैर च पता भाई। हम बंदा कोई इतने बैठा है आ स्कूल के परले बने वो कन्न डिग पवे इतने उन्होंने पता लग जूगा। हाँ संपूर्ण शरीर समझना चाहिए। इस विपरे से आगे कहते हैं चेतना अपादा अपादा मस्तकम, जीव पैर से लेकर मस्तक पर्यंत देहम व्याप्य स्थूल शरीर को व्याप्त होकर जागृति जागता रहता है। और जिहड़ा जीव है वह स्थूल शरीर दे विच संपूर्ण व्यापक है। जे ऐसे हो गए हाथी दे शरीर दे विच वड्डा जीव हो गया तो वह मर के चीटी बन गया कीड़ी, तो फिर बाकी शरीर किधर घूमता रहूगा लटकता रहूगा फिर बाहर ही, चीटी च इन्ना गाया हाथी च कि बाकी ओदा कित्थे जाऊ फिर।
मतलब जागरण च तां सारे शरीर च है, सुपने च कंठ च आ गया,
हृदय ना सोचो हृदय नाल,
हृदय नाल सोची हुई हृदय नाल कही
कही हुई गल ओ काम करदी आ, सतनाम वाहेगुरु जीवा ना नी कहना अंदरों कहना, अंदरों कहना है ना मैं ब्रह्म हूं जीवा ना नहीं कहना, जिथे ब्रह्म है उथो आवाज उठे। पूर्व श्लोक में उक्त देहम वाप्य है, पूर्व श्लोक में उक्त देहम वाप्य इस शब्द से कहने के इष्ट अर्थ को दृष्टांत प्रदर्शन द्वारा स्पष्ट करते हैं। देहता देहता द्यातम मापन्नास्ताप्यत्या पिंडवत्त्वतः अयम मनुष्य इति एवं निश्चित तैवा वतिष्ठते तप्यत पिंडवत् तपाए हुए लोहे की तरह, जैसे तपाया लोहा तपाया हुआ लोहा और अग्नि दोनों का अभेद भाव हो जाता है उसी प्रकार हो जाए एकमेक हो गए ना तो उदो फिर केड़ा व्यवहार होंदा। मान लो इदा का अपना लोहे का पिंड है वो लाल करता अग च रख के अग्नि वर्गा उन्हूं कपड़े ते रखता ते की कहांगे लोहे ने साड़ते ते साड़ना लोहे का कम नहीं है, साड़ना अग्नि का ही कम है।
अग्नि वाले गुण उहदे च आ गए,
अग्नि वाले गुण उहदे विच आ गए उहदे संयोग नाल। अग्नि किथे है वो किथे है इहदा की अर्थ होया कि जिहदा संयोग करोगे ना उहदे गुण तुहाडे च आ जाणगे, चाहे माड़े कर लो माड़े बंदे का कर लो चाहे चंगे का कर लो वो गुण तुहाडे च अपने आप ही आ जाने, उन्हां नूं लियाउण दी जरूरत नहीं पैणी। ब्रह्म दा करोगे तो ब्रह्म दे आ जाणगे, जे किसी संसार का करोगे तो वो तो फिर आए ही पहले पहले ही है। जैसे संग करोगे ऐसा हुण उहदा अग्नि दा संग कीता तो कैसे हो गया लाल, ठीक है उन्हूं कोले काले है तो कोले दे विच पसोर दो तो कैसे हो जाएगा काला हो जाएगा। हाँ साबण लाला धोता कोला दुध नहीं विच पाया, पुठ चाड़ रंगन भी धरिया रंगना उसे बिटाया, विछड़ के कालख सी आई अग्नि ना विछड़ गया सी तां काल खाई सुच, बिन मिलिया ना लेंदी वो जिहड़ी कालख सी उन्हूं साबण ना धो कोले नूं और बिन मिलिया ना लेंदी, जिन्ना चिर अग च नहीं मिलदा उन्ना चिर लहदी नहीं,
फिर
लाल ज जैसे तपाया हुआ लोहा और अग्नि दोनों का अभेद भाव हो जाता है, उसी प्रकार देहतात्मम स्थूल शरीर के साथ मिथ्या अभेद को अपन प्राप्त हुआ वह जह जीव तथा अयम मनुष्य अनंतर बाद में मैं मनुष्य हूँ इति एवं निश्चित्य एव। इस प्रकार संशय आदि रहित निश्चय रूप ज्ञान से स्थूल शरीर को आत्म रूप से ग्रहण करके ही अवतिष्ठ स्थित होता है। और शरीर नु की समझ लिया आत्म रूप आत्मा शरीर आत्मा
शरीर नु मैं समझ लिया
शरीर नु मैं समझ लिया क्यों शरीर दे नाल एकमेक हो गया शरीर नु जो एक समझ लिया ओद नाल रलोगे अग नाल रलोगे तो अग दे गुण आ जाएंगे कोले दे स्वाद नाल रलोगे तो स्वाद दे गुण आ जाएंगे तो होना ही फिर जैसा शरीर है जिसे शरीर के धर्म है वो आने ही है लोहे का धर्म ठारना नहीं है जलाना लोहे का धर्म नहीं है पर अग्नि के संजोग के नाल ओदे च वो धर्म आ गया गुण उन्हें कपड़े से रखता लाल लोहे नूं तो साड़ देगा तो व्यवहार ही होगा लोहे ने साड़ता। ऐसे ही शरीर है शरीर के नाल जुड़ोगे तो जीव तो बनी जाओगे फिर जन्म शरीर के धर्म कहे जन्म मरण तो वह भी अपने आप समझ लूगा फिर मैं जन्म जन्मया मैं मरूंगा ऐसा। देह में तदात्म भान है हेतु जिस में इस ऐसी अन्य अवस्था को भी दिखाते हैं और उत्तरार्थ से सुख दुख कर्म जन्य है इस वार्ता को भी दिखाते हैं। सुख दुख कैसे हैं कर्म तो उत्पन्न होने वाले उदासीन सुखी दुखी त्यावस्था त्रय मित्य सौ सुख दुखे कर्म कार्य त्वदासीनम स्वभावतः असौ उदासी न जह वह देवमानी जीव मैं उदासीन हूँ मैं उदासी हो गया सुखी दुखी मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ इति अवस्था त्रयम इस प्रकार तीन अवस्था को एते प्राप्त करता है सुख दुखे उन तीनों में सुख दुख जे दोनों कर्म कार्य के द्वारा किए गए हैं कर्म के द्वारा ये सुख दुख कितों आए कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तू आदव सीनियम परंतु उदासीन अवस्था तो स्वभावतः स्वभाव से सिद्ध है जरा उदासीन मैंने उपराम उपराती अपना सुभा ही है उपराम लगाओ लगाओ ही नहीं किसी ना आत्मा का ब्रह्म का किसी ना लगाओ है उदासीन ही है वो तो सुभाव जाइए बस भी फिर हूं आ गए निमित्त भेद से सुख दुख दो प्रकार का है और उन दोनों के अभाव दर्शन में उदासीनता रहती है इस वार्ता को अब कहते हैं।
काफी चलो